Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, वनकम, सुस्वागतम, पधारो इन योर फेवरेट शो समाधान। मित्रों, कहते हैं कि प्राप्तियां प्यार को पैदा करती हैं। जब हमें किसी से प्राप्ति होती है तो हमारा प्यार स्वतः उससे हो जाता है, एक नेचुरल सी बात है। और आप सबको भी प्राप्तियां होती चल रही हैं अनुभव के आधार पे, इसीलिए स्पिरिचुअलिटी से, परमात्मा से, मेडिटेशन से आपका भी प्यार लगाव होता चल रहा है। और ये प्यार, ये लगाव बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये हमें अच्छाई की ओर ले चलेगी। कल भी मैंने अनुभव की बात कही थी। पुणे से उमा जी ने हमें फ़ोन किया और बताया कि उनकी माँ को भी लंबे समय से डायबिटीज़ की बीमारी थी और उन्होंने ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की, जिससे अब वो बिल्कुल ही नॉर्मल हैं। खान पान पे तो खैर वो ध्यान रखती हैं, लेकिन आध्यात्मिक अभ्यास भी उन्हें बहुत मदद कर रहे हैं। ऐसे ही फिरोजपुर से हमारे पास कुछ हफ्ते पहले फ़ोन कॉल आया था और माता जी बहुत ही उदास थी, निराश थी। उन्होंने बताया कि मैंने बहुत ही मेहनत करके, मजदूरी करके अपने दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया, उन्हें नौकरी दिलाई, मिली मतलब, और साथ ही अब उनकी शादी ब्याह हो गया है तो वह अपने घर में मस्त हो गए हैं, मेरी ओर ध्यान नहीं देते। यहाँ तक कि मुझे खाना भी अपने लिए खुद बनाना पड़ता है, मुझसे वो बात नहीं करते, मेरी ओर देखते नहीं, तो मैं बहुत उदास हूँ, निराश हूँ, दुखी हूँ कि मैंने जिनके लिए इतना कुछ किया वो अब मेरी ओर देखते भी नहीं हैं। कम से कम प्यार से बात तो कर लेते, ऐसा कह के वो बहुत ही निराश हो गई थी, जैसे रुआंसा सा हो गया था उनका स्वर। प्राता जी जो अभ्यास हमें बताते हैं, वही अभ्यास मैंने फ़ोन पे उन्हें भी बताया था और कुछ दिन पहले ही उनका भी फ़ोन आया और बहुत ही खुश थे। उन्होंने कहा कि मैंने केवल ये अभ्यास ही किए और बड़ा बेटा मेरे पास आया और उसने मेरा हालचाल पूछा कि माँ तुम कैसी हो, तुम हमारे साथ ही रोटी खाओगी, अब तुम्हारी बहुएं, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। तो मित्रों, कितना सुंदर अनुभव है ना, कि थोड़ा सा अभ्यास यदि हम करते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, तो सचमुच सामने वाले की वृत्ति, दृष्टि, भावनाएं, उसका व्यवहार सब कुछ चेंज हो जाता है। कई बार हम ये सोचा करते थे कि सामने वाला ऐसा कर रहा है तो हमारे मन में दूषित भावनाएं पैदा हो जाती थी, द्वेष की भावना कह लें या नेगेटिव फीलिंग्स पैदा हो जाती थी, और यही नेगेटिव फीलिंग शायद हम उन्हें देते थे तो ये गहराइयां और बढ़ती चली जाती थी, दूरियां बढ़ती चली जाती थी। लेकिन यदि हम अच्छी फीलिंग रखते हैं, अच्छी भावनाएं देते हैं, तो सामने वाले से भी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलने लगता है। और अच्छा लगता है जब दिल मिल जाते हैं, अच्छा लगता है जब परिवार मिल जाते हैं, अच्छा लगता है जब किसी के आंसू थम जाते हैं, और हमें तो बहुत अच्छा लगता है जब आपको अच्छा लगता है। तो आइए इस अच्छे अच्छे अनुभव के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है।
थैंक्स।
बड़े प्यारे से अनुभव आ रहे हैं भ्राता जी, और बड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, दिल को राहत मिलती है कि किसी के आंसू थम गए, चेहरे पे खुशहाली आ गई।
ना, बल्कि उनके आंसू पोंछने के लिए स्वयं परमपिता आने लगते हैं। ये बहुत एक अच्छी बात है कि स्पिरिचुअल होने से हम अपने परमपिता से जुड़ जाते हैं, उसके समीप आ जाते हैं, उससे हमारे मन में अपनापन होने लगता है, और ये अपनापन बहुत बड़ी चीज है। जैसे परिवारों में अपनापन, प्यार कितना सुखद अनुभव देता है, वैसे ही अगर भगवान से अपनापन और प्यार हो जाता है तो जीवन की राहें ही दूसरी हो जाती, अनुपम अनुभव। तो ये हो रहा है बहुतों के साथ, मैं तो उसको ही धन्यवाद देता हूँ कि उनसे सब जुड़ते जा रहे हैं और अपना जन्म सिद्ध अधिकार जो उससे लेना चाहिए वो ले रहे हैं।
बिल्कुल। और ये जो अनुभूतियां हैं व्रता जी, सचमुच सहज ही लोगों को अब अध्यात्म की ओर भी बढ़ा रही हैं। मैं शुरुआत से ही, जब समाधान की शुरुआत हुई तो मैं आपसे कहा करता था कि लोगों को शायद ये पता नहीं था कि ये भी एक तरीका हो सकता है, मतलब अध्यात्म भी एक हमारी समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है, या योगाभ्यास के द्वारा भी हम इससे निजात पा सकते हैं। शायद इस विषय पे हम सोचते ही नहीं थे।
हाँ, सोचते नहीं, और देखिए है यही, इसके पीछे रहस्य यही है। मनुष्य संसार में कोई ये नहीं सोचता कि समस्याएं संस्कारों के कारण पैदा हो रही हैं। जैसे ये उदाहरण दिया कि माँ ने अपने बेटों को कितना मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, शादी कराई, और वो देखते नहीं है, तो ये एक ऐसी चीज हो गई है जो बड़ी समस्या पैदा कर रही है। अब वो माँ बेचारी थोड़े दिन में बीमार ही हो जाने वाली थी, खाट पकड़ लेती। तो देखिए, बीमारियां भी मानसिक रूप से पहले प्रकट हो रही हैं मनुष्य के पास, फिर उसका इफेक्ट शरीर पर आता है। अब ये बात दुनिया में इतनी आम रूप से लोग नहीं जानते हैं। और स्पिरिचुअलिटी से संस्कार बदलते हैं, स्वार्थ खत्म होता है, एक अपनेपन की फीलिंग होती है, आत्मिक भाव बढ़ता है, और जब मन बहुत खुश रहने लगता है तो बीमारियां ठीक हो जाती हैं। कई लोग सुनाते हैं कि हम तो ज्ञान मार्ग पे चलने से पहले रोज 15 गोली खाते थे, अभी अज्ञान मार्ग पे आए हमने तो 10 दिन में ही सारी छोड़ दी, के अब तो हम खुश रहेंगे, कोई बीमारी शिमारी हमें नहीं है। और कहा हमें ना कोई बीमारी होती, वो जो दवाई खाते थे वो सब भी पैसा बच गया, हम तो बहुत सुखी हो गए।
बिल्कुल, मतलब मन की स्थिति भी शरीर के लिए बहुत ज्यादा एक कारगर साबित होता है। और प्रताप जी, ये इस बात से और ज्यादा खुशी हुई कि ये विद्यालय से नहीं जुड़ी हुई थी और इन्होंने जस्ट ये प्रैक्टिसेस की और इतना सुंदर रिजल्ट मिला, तो ये कह रही थी कि अब मैं भी विद्यालय में जाऊंगी, राजयोग सीखूंगी। तो लगता है कि बिना राजयोग सीखे हुए भी इतना अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, तो यदि राजयोग बहुत गहराई से सीख लिया जाए तब तो कोई समस्या रहेगी ही नहीं।
बस यही है कि राजयोग से मनुष्य को बल मिलता है पॉजिटिव थिंकिंग का, जैसे इनके केस में हुआ। तो इन्होंने उन्हें आत्मा देखकर, दे आर माय गुड बॉय, गुड फ्रेंड, बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे हैं, एक अच्छे संकल्प देने से ये सुंदर वाइब्रेशंस उनको जाने लगे। और जब मनुष्य सवेरे उठते ही ये करता है तो ये सुंदर वाइब्रेशंस दूसरे व्यक्ति की पावर ऑफ रियलाइजेशन को बहुत बढ़ा देते हैं और उन्हें महसूस होने लगा कि अरे हम गलती कर रहे हैं, हमारी माँ और जिसने हमारे लिए सब कुछ किया है, हम ऐसा कर रहे हैं उनसे। और प्राय ये तब बहुत ज़्यादा होता है उनको जब बच्चा हो जाता है ना, और उनकी जो ममता बच्चे के लिए जाती है तो वो उसे याद दिलाती है कि तुम्हारे माँ बाप ने भी तो यही किया होगा ना, तब जागृति आती। बहुतों को देखा कि बच्चा होते ही माँ बाप के लिए उनके विचार बदल जाते हैं।
वही वाली बात रहता है जी कि वो नहीं, अपने माता पिता को शायद वो मिट्टी के बर्तन में खाना देते थे तो बच्चा भी संभाल के रखता था। पिताजी ने पूछा कि ये क्या करता है, तो बोले बड़े बूढ़े हो जाओगे आप तो मैं भी इसी में तुमको दूंगा। मतलब बात वही आ जाती है कि जब बच्चों की फीलिंग वो समझते हैं तभी वो कर पाते हैं। पता जी, एक विशेष बात, जैसे यहाँ पे संबंधों में एक मधुरता आ गई या नजदीकी आ गई, तो जहाँ कहीं भी ऐसे संबंधों में दूरी या खटास या गहराई दिखाई दे रही है कि अलग होते जा रहे हैं, वहाँ पे नेचुरली ये वाली फीलिंग आ जाती है सामने वाले के अवगुण बुराई कि उसने मुझसे ऐसा किया। यदि हम अपनी फीलिंग्स को या अपने थॉट्स को चेंज करें जैसा इन्होंने किया, तो क्या हर एक संबंधों में यही मधुरता आ सकती
है? बिल्कुल, यही करना चाहिए। जैसे मान लो पति पत्नी के बीच दूरी बढ़ती जा रही है, ऐसे माँ बाप और बच्चों के बीच दूरी बढ़ती जा रही हो, या ऑफिस में साथियों के मध्य में दूरी बढ़ती जा रही हो, या कहीं फ्रेंड सर्किल में इस तरह की दूरी बढ़ती जा रही हो, तो सवेरे उठते पहले तो 7 बार याद करना चाहिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे हमारी आंतरिक शक्तियाँ जग जाती है, बढ़ने लगती हैं, तो जो हमारे वाइब्रेशंस फैलेंगे वो शक्तिशाली रूप से फैलेंगे। क्योंकि सबके मन तो काफ़ी वीक हो चुके हैं तो उनके वाइब्रेशन ढीले ढाले डल डल से फैलते हैं, तो वो दूसरे की मनोवृत्ति को बदल नहीं पाते हैं। तो जब हम ये अभ्यास करेंगे 7 बार, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, और साथ में ये भी जोड़ देंगे सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, तो हमारे वाइब्रेशंस बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। फिर संकल्प करें, उन्हें आत्मा देखें या मस्तक के मध्य में, कि ये चमकती ज्योति हैं और ये बहुत अच्छी आत्मा है। फिर जैसे माइंड टू माइंड उनसे बात करें, यू ऑल आर माई गुड फ्रेंड्स, पति पत्नी हैं तो संकल्प करें, तुम तो मेरे पूर्ण सहयोगी हो, मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, तुम ही तो मेरे सहारे हो, हम दोनों गुड फ्रेंड बनकर जीवन की यात्रा तय करेंगे। रोज रोज ऐसे गुड वाइब्रेशंस यदि एक दूसरे को देने लगे तो ये वैमनस्य, ये मनमुटाव, ये घृणा द्वेष, ये सब धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। 7 दिन में ही बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, चलिए यही तो एक लक्ष्य रहता है ब्रता जी, कि कितनी भी दूरियां भले बढ़ गई हो लेकिन फिर से नजदीकी आ जाए और समीपता आ जाए, यही सब चाहते हैं। ब्रता जी, कुछ पत्र आए हैं हमारे पास, मैं पत्रों की ओर आपको लिए चलता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि पत्र आते हैं तो सचमुच मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। इन्होंने बहुत सारे प्रश्न लिख के भेजे हैं ब्रता जी। ये हैं बीके गुरुदेव सिंह, अमृतसर पंजाब से इन्होंने हमें भेजा है, और इनके कई प्रश्न हैं। उनमें से पहला ये कहते हैं कि परमात्मा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ करके मुझे याद करो, तो आत्मा समझ कर कैसे याद करें, इसका भाव क्या है?
देखिए, जब आत्मा इस शरीर में है तो शरीर और आत्मा का मिलन ही जीवन है
जी।
और आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ये प्रैक्टिस करने से हम सोल कॉन्शियस होने लगते हैं। अगर हम ये प्रैक्टिस नहीं करते कि मैं आत्मा हूँ, तो हम बॉडी कॉन्शियस में ही रहते हैं। जैसे भक्ति में लोग भगवान को याद करते हैं, तो वैसे ही हम भी करते रहते हैं अपने शिव बाबा को याद। तो इसी योग का एक सुंदर लक्ष्य है कि आत्मा के जो सातों गुण हैं, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, हमें इन्हें जगाना है, बढ़ाना है और परफेक्ट करना है। तो वो तब तक नहीं हो सकता जब तक हम सेल्फ की अवेयरनेस में ना आए, मैं आत्मा हूँ, इस देह से अलग हूँ, अपने स्वरूप को हमें देखना, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मुझसे किरणें फैल रही हैं। फिर बहुत अच्छी तरह ये अभ्यास करना है विद फीलिंग्स कि मैं शांत हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं तो मूल रूप से पवित्र हूँ, ऐसे। तो ये सब चीजें बढ़ने लगेंगी जीवन में। एक तो इसका ये अर्थ है। दूसरा, परमात्मा क्योंकि निराकार है, वो देह रहित है, अशरीरी है, तो उसकी एनर्जी को ग्रहण करने के लिए हमें भी अशरीरी होना पड़े। अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं, तो हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस उसकी एनर्जी को रेजिस्ट करेगा, वो हम तक पहुंचेगी नहीं। इसलिए आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना, ये परफेक्ट विधि है योग लगाने की, इससे ही सर्व प्राप्तियां होंगी।
तो भ्राता जी, जैसा अब ये कहा गया है कि आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो, जैसे ब्रह्मा कुमारी जी ये कहती हैं, परमात्मा ये कहते हैं, तो इससे पहले हमें ये ज्ञान नहीं था कि हम आत्मा तो समझते नहीं थे। हाँ, ये फीलिंग थी कि हम आत्मा हैं, लेकिन हम कभी भी आत्मा समझ के उस परमात्मा को याद नहीं करते थे। तो क्या यही कारण था कि हमें उसकी समीपता या वो अनुभूति नहीं हो पाती?
बिल्कुल यही कारण था, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहे और धीरे धीरे तो मनुष्य भूलता ही गया कि हम आत्मा हैं। भी प्रैक्टिस तो छोड़ो, वो कंप्लीट मैं यही हूँ, बॉडी कॉन्शियसनेस में ही रहा, बॉडी कॉन्शियसनेस से देखता रहा, उसी से व्यवहार करता रहा, परिवारों में भी उसी फीलिंग से मनुष्य रहा, इसलिए उससे हम दूर रहे और उसके वाइब्रेशंस भी हम कैच नहीं कर पाए। और जब ये सब कुछ हो गया तो इन मनोविकारों ने हमारे अंदर डेरा डाल लिया फुल फोर्स से, और यही दुखों का, अशांति का, असफलता का, भय का मुख्य कारण बन।
तो प्रताप जी, जब भी हम मेडिटेशन करें तो क्या शुरुआत हमें यहीं से करें?
शुरुआत हम यहाँ से करें कि मैं आत्मा हूँ, इस देह से बिल्कुल अलग हूँ, बिल्कुल अलग अलग देखेंगे दोनों को। हो सके तो यहाँ से आत्मा निकल के इधर आ गई या सामने आ गई, ऐसा हम फील करें, भले ये कल्पना जैसा है, पर इससे हमें ये महसूस होने लगेगा कि ये देह अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। फिर अपने को अच्छे संकल्प दें, जैसे मैंने इसमें प्रवेश किया है, मैं इस देह की मालिक हूँ, मालिक बिल्कुल अलग, मैं आत्मा तो यहाँ बैठी हूँ अंदर ब्रेन के मध्य में, और मेरे ये गुण और शक्तियाँ हैं। तो ऐसी शुरुआत करने से जैसे हम अपनी बुद्धि का गेट खोल देते हैं कि परमात्मा का सब कुछ हमारे अंदर प्रवेश करे।
भ्राता जी, कई बार आप जैसे बताते हैं कि योग में बहुत सारी विविधता है, कि भाई हम ये भी अभ्यास कर सकते हैं, ये भी अभ्यास कर सकते हैं, ये भी, तो वहाँ तो फिर इस आत्मिक स्थिति वाली बात नहीं रहती है, तो क्या उसमें भी हमें फिर वही प्राप्ति होती है?
नहीं, एक बार हमें अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित कर लेना चाहिए, फिर हम जैसे चाहे योग का अभ्यास करें तो हम आत्मा हो गए, और जिस तरह भी, जिस विधि से भी हम योग का अभ्यास करेंगे, हमें संपूर्ण प्राप्तियों का अनुभव होगा।
कईयों को यदि ये फीलिंग नहीं हो रही है, जैसे आपने कहा कि भाई आत्मा फील नहीं हो रहा है, कि मैं आत्मा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है, फील नहीं हो रहा है, तब तो वो फिर इस फर्स्ट फेज में ही अटक जाएगा।
हाँ, इसलिए इसकी थोड़ी चलते फिरते, कर्म करते प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इसी की दूसरी प्रैक्टिस है स्वमान, ये नहीं तो स्वमान करना चाहिए। स्वमान से क्या होगा, मन बहुत जल्दी शांत होने लगेगा, क्योंकि जब हम सारा दिन स्वमान की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी मन की स्पीड धीमी रहती है, और इससे फिर बॉडी लेस होना ईजी होता जाएगा। तो इसके लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए, कुछ दिन तो ऐसा कर लेना चाहिए कि सवेरे शाम हम योग लगा लें, लेकिन सारे दिन में हम ये 10 बार अभ्यास कर लें, ये देह अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ, बस इतनी देर, जस्ट आधा मिनट कर लें, तो ये चीज फिर नेचुरल स्वरूप में आ जाएगी।
यदि दिखाई ना दे रहा हो, फील ना हो रहा हो, तो क्या केवल संकल्प से भी
फायदा होगा, पर विजुअलाइजेशन से संपूर्ण लाभ होगा।
लाभ होगा। एक प्रश्न प्रता जी बहुत पहले हमारे पास आया था, चूंकि इस संदर्भ में मुझे वो बात याद आ गई कि परमात्मा कहते हैं, किसी ने वो लिखा था पत्र कि मुझे तुम परमधाम में याद करो, आत्मा समझ करके मुझे जब तुम परमधाम में याद करते हो यही यथार्थ योग है। बाकी सब क्या है वो तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात शायद परमात्मा कहते हैं। तो फिर दूसरे प्रकार के जो हम योग करते हैं वो करें या केवल यही वाला योग?
देखिए, ये है उसकी फाइनल स्टेज कि हम परम धाम में अपनी बुद्धि को ले जाएं और परमात्मा से जोड़ दें। लेकिन कईयों से ये नहीं होता, एक ये बात, और दूसरी ये बात, एक ही तरह का योग अभ्यास करने से माइंड अनेक बार आनंद की अनुभूति नहीं करता, उसको उसमें बोरियत सी फील होने लगती है। इसलिए योग को वैरायटी रूप से अभ्यास में लाने से सब इजी हो जाता है। और वैसे भी देखिए, मान लो एक व्यक्ति अमेरिका में बैठा है, हमने उसको यहाँ से याद किया, तो उसका फेस हमारे सामने आ जाएगा और फिर कुछ मन में विचार चलेंगे उसके बारे में। अभी जब हम उसके बारे में सोच रहे हैं या उसको विजुअलाइज कर रहे हैं, फिर हमें ये याद नहीं रहता वो अमेरिका में है और अमेरिका बहुत दूर है, वो तो जैसे हमारे सामने होता है, हो जाता है ना इसी पर से। ऐसे ही योग अभ्यास है, जब हम उसको परम धाम में याद करने लगते हैं या अपने सामने याद करने लगते हैं या सिर पे वो छत्र छाया है इस रूप में याद करने लगते हैं, तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है।
बिल्कुल, मतलब ये याद की स्थिति में फिर वो समीपता का अनुभव होने लगता है। और ये वैरायटी भी योग नवीनता के लिए करते रहना चाहिए। तो क्या ब्रता जी, जैसे ये कहा जाता है, जैसे उनका प्रश्न भी यही था कि जब परमात्मा ये कह रहे हैं तो हम इसी चीज पे क्यों ना फोकस हो, दूसरी चीजों पे क्यों?
इस पे फोकस करना चाहिए, पर सबसे और सदा काल ये होता नहीं है, क्योंकि परम धाम में बुद्धि को लंबा काल स्थिर रखने के लिए मनुष्य को ब्रेन की बहुत शक्तियां यूज होती हैं
जी।
इसलिए ब्रेन थोड़ी देर में थकान फील करने लगेगा, किसी का तो 10 मिनट ही होता है, वो फिर कहते हैं हमारा तो होता ही नहीं, उसके बाद बुद्धि आप ही नीचे खिसक आती है। इसलिए वैरायटी अभ्यास करने से ये समस्या नहीं रहेगी।
बिल्कुल सतीश जी, ये दूसरा प्रश्न करते हैं कि परमात्मा कहते हैं कि सर्व संबंधों का अनुभव करो, क्या सर्व संबंधों का अनुभव करना जरूरी है?
देखिए, ये है कि आत्मविमानी स्थिति में स्थित होकर परमात्मा से लिंक जोड़कर जो हम योग अभ्यास करते हैं उसमें हमारे कम से कम संकल्प भी होते हैं, हम निर्संकल्प जैसे हो जाते हैं। ये तो हुआ मोस्ट पावरफुल योग, जिससे हमारे विकर्म विनाश होते हैं। लेकिन विकर्म विनाश करने के साथ साथ हमें भगवान से भिन्न भिन्न तरह के प्यार का अनुभव भी करना होता है, जो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है जीवन में। और प्यार के साथ साथ उससे अपनापन, और मुख्य चीज है कि संबंधों में मनुष्य का लगाव बहुत है। अच्छा, कुछ संबंध ऐसे हैं जो कईयों के पास हैं नहीं, जैसे किसी को बच्चा नहीं है, या किसी के पति ने शरीर छोड़ दिया है, या किसी को अच्छे फ्रेंड नहीं मिले हैं। तो ये संबंध उससे जोड़ने से वो जो संबंधों का अभाव महसूस हो रहा था, ऐसी हमारे पास अनेक माताएं हैं भाई जिनको बच्चे नहीं थे, अब जैसे ही शिव बाबा के पास वो आए, उससे योग युक्त हुए और उन्हें ये पता चला कि बाबा को अपना बच्चा भी बनाया जा सकता है शिव बाबा को, तो उन्होंने उससे ये नाता जोड़ा कि तुम हमारे बच्चे भी हो, और वो बाकायदे बच्चे की तरह उससे व्यवहार करती हैं, जैसे पास सुलाएंगी, भोजन खिलाएंगी, खुद आएंगी तो उसको भी नहलाएंगी, उसके कपड़े भी तैयार करेंगी, ऐसे करती हैं माताएं। तो उनको वो जो अभाव था, उसकी जो एक बैड फीलिंग थी, वो समाप्त हो गई और वो बहुत सुखी हो गए हैं। तो इस तरह से सब संबंधों का अनुभव करना एक अलग ही सब्जेक्ट है, जिसमें आत्मा के अनुभव भी बहुत अलग होंगे। ये जो योग है ऊपर से, इसे एनर्जी मिलेगी, हम शक्तिशाली बनेंगे, हमारे विकर्म विनाश होंगे तो हम बहुत हल्के होते जाएंगे, लेकिन उससे कुछ और अनुभव होंगे, जैसे मनुष्य को जैसे मनुष्य को एक परिवार हो, बड़ा प्यार भरा
जी,
बच्चे बहुत स्वीट, पति और पत्नी का संबंध बहुत मधुर, ऊपर के माँ बाप भी बहुत अच्छे, सबको प्यार दे रहे हैं, घर में कैसा माहौल रहता है, ऐसे ही सर संबंध जब उससे जोड़ते हैं तो हमारे जीवन में ये सुख शांति आनंद प्रेम ये भरपूर होने लगता है।
बिल्कुल, और वो उसकी याद भी सहज हो जाती है शायद। जैसे कई भक्त कोशिश करते हैं कि मैं निरंतर तुम्हारी याद में रहूं, तो शायद ये संबंधों में रहने से याद भी सहज हो जाएगी। लेकिन जी वो दूसरी बात ही बात है जी इनकी कि क्या हमें ये जो अनुभूति है आत्माभिमानी होकर के करना चाहिए या दैहिक रूप में भी किया जा सकता है?
देखिए मैंने बता दिया कि एक बार हम आत्मविमानी होने की अच्छी प्रैक्टिस कर लें
जी,
फिर उसकी हर समय जरूरत नहीं है, फिर तो डायरेक्ट उससे नाता जोड़ना है, उस नाते के अनुसार उसे बातचीत करनी है, उसे जैसे व्यवहार करना है, फिर ये बार बार सोचने की आवश्यकता नहीं होगी।
अगला प्रश्न है व्रता जी इनका, कहते हैं कि ज्ञान का बहुत बड़ा विस्तार है, सागर जैसा ज्ञान है, परमात्मा एक एक शब्द का भी प्रयोग करते हैं कि सदा और निरंतर इन चीजों का तुम अभ्यास करो, तो कई बार मन में कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है कि इतने सारे ज्ञान में से हम किसका अभ्यास करें, क्या करें क्या ना करें, किस बात का सारे दिन अटेंशन रखें, कैसे हम इसे अपने जीवन में लाएं, तो ज्ञान के विस्तार को देखते हुए मन में कई बार कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। क्या आप कुछ सार में ऐसी चीज बताएंगे जिन पे हम ध्यान दें तो सारी चीजें हमारे जीवन में शामिल हो जाएं? तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण
बहुत ही अच्छी चीज है। जैसे एक छोटी सी बात है कि पेड़ एक है, वृक्ष है, उस पर डालियां निकल गई, पत्ते लग गए, लेकिन पानी हम उसकी जड़ में ही डाल देते हैं ना, खाद भी उसकी जड़ में डाल देते हैं, ध्यान देते हैं जड़ों पे। ऊपर तो हमें ध्यान देना होता है भाई, फल लग गए तो पक्षी ना खाएं, केवल केयर करनी होती है, बाकी पोषण के लिए बीज को और जड़ों को हम देते हैं सब कुछ। ठीक ऐसे ही सारे दिन में दो चार बातें ही ध्यान रखनी, उसमें सब आ जाएंगे। जैसे बीच बीच में अशरीरी होने का अभ्यास, बीच बीच में स्वमान की प्रैक्टिस, बीच बीच में ये अभ्यास कि वो मेरे साथ है या उसकी किरणें आ रही हैं, और दो चार ऐसी धारणाओं की बातें, जैसे हमें व्यर्थ नहीं बोलना है, सुखदाई बोल बोलने हैं, हमें संतुष्ट रहना है, हमें बहुत खुश रहना है, बस इनमें सारी चीज़ें आती जाएंगी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ सूक्ष्म चीज हमें ख्याल में आती जाएंगी। देखिए सब चीजों को एक साथ में लिया जा सकता है, उसमें कोई कठिनाई नहीं होती है। जब हम योग अभ्यास करते हैं, स्वमान का अभ्यास करते हैं, तो हमारा अभिमान नष्ट होता है, मैंपन छूटने लगता है। तो बस इतनी थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखेंगे, सारा दिन हम योग पे विशेष ध्यान दें, जो मैंने कहा है शरीरीपन, स्वमान, और दो तीन ये धारणाएं, व्यर्थ नहीं बोलना है, अच्छे बोल बोलने हैं, संतुष्ट रहना है, किसी को सताना नहीं है, बस इससे जो मूल चीजें हैं वो भरपूर रहेंगी जीवन में, और हमारे जीवन का प्रभाव बहुत अच्छा दूसरों पर भी पड़ेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया व्रता जी आज के सुंदर प्रकाश के लिए। सचमुच ये चर्चा तो वैसे बहुत गहन है मुझे लगता है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म है और सूक्ष्मता में जाए बिना शायद इसे बाहरी तौर पर नहीं समझा जा सकता। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, परमात्मा उनके लिए कहा जाता है कि उन्हें जानना समझना सचमुच बहुत ही कठिन है। वैसे यदि आप शास्त्रों में देखें तो हमारे बहुत सारे विद्वानों ने कहा नेति नेति, अर्थात ना ये है ना ये है, ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो मतलब बहुत गहन चिंतन की भी आवश्यकता है और साथ ही अच्छे योगाभ्यास की भी आवश्यकता है। लेकिन चलिए उस गहनता तक हम नहीं भी पहुंच पाते हैं तो कम से कम ये बात तो हमारे ध्यान में स्पष्ट हो ही गई है कि वो हमारे माता पिता हैं। सबसे सहज सी बात, हम जो गाते आए हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, तो इतना तो हमें ज्ञात है ही कि आप हमारे माता पिता हो, आप हमारे बंधु सखा हो, आप हमारे संरक्षक हो, हमारे पालनहार हो, हमारे तारणहार हो। इस भाव को भी लेकर के यदि हम चलते हैं तो बहुत सहजता रहती है, बहुत समीपता का अनुभव होता है और साथ ही शक्ति भी हमें मिलती है, और राजयोग हमें धीरे धीरे उसके और नजदीक ले जाता जाता है। और सूक्ष्मता से, जैसे अंतिम प्रश्न था इनका कि हम कैसे समझें कि वो क्या हैं, तो उनके स्वरूप को समझने के लिए या फिर वो सचमुच क्या हैं, क्या हमें दे सकते हैं, हम उनसे क्या ले सकते हैं, इसको जानने के लिए तो शायद बहुत ही सूक्ष्मता की आवश्यकता है ही। जैसे जैसे जब हम राजयोग करते जाएंगे, कर रहे हैं हम सभी, तो उस बात को भी हम समझते चलेंगे और उसकी और समीपता के द्वारा अपने जीवन को महानता की ओर ले जा पाएंगे। आप बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में, कल इन्हीं सुंदर चर्चाओं को आगे भ्राता जी के साथ बढ़ाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।